परंतु
वह दृश्य जो है वो किसका विषय है? स्वप्न का दृश्य, स्वप्न का जो दृश्य है वो अंताकरण का है, परंतु अंताकरण भी तो दृश्य है, अंताकरण भी दृश्य कोटि में आता है, इंद्रियां भी दृश्य कोटि में आती हैं, शरीर भी दृश्य कोटि में आता है, भाव प्रपंच के अंदर सब आता है ना, तो प्रपंच पूरा दृश्य है। जब सकल कह दिया ना, सकल सकल का अर्थ है कुछ नहीं बचा, केवल आत्मा को छोड़ करके सभी दृश्य में आ गया। तो जब जागृत में रहते हैं तो बाहर के जो विषय हैं उनको इंद्रियों से हम, वो हमारी इंद्रियों का दृश्य बनता है। जब स्वप्न में जाते हैं तो जो स्वप्न सृष्टि है वो केवल मन का विषय है, मन के द्वारा रचित है वह सृष्टि, पर रचित तो है मन के द्वारा, लेकिन उसको प्रकाशित कौन करता है? साक्षी, वो साक्षी भाष्य है, साक्षी उसको प्रकाशित करता है। उस समय इंद्रियां तो काम नहीं करती, ज्ञान कराने का साधन तो इंद्रियां है ना, अंतःकरण जो है बाहर जाने में प्रतंत्र है, आपको हमने बताया था, प्रतंत्र में ही बहिर्मनः, जो मन है वो बाहर जाने में स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है, परतंत्र का अर्थ होता अधीन है, किसके अधीन है? इंद्रियों के, बिना इंद्रियों के वो बाहर जा नहीं सकता, तो बाहर जब जाएगा नहीं, उसको जाने का साधन नहीं, तो कैसे प्रकाशित होगी कोई वस्तु? तो ये स्वप्न सृष्टि तो मन की अपनी है, वो तो बाहर की देखी सुनी चीजों के संस्कार है, वो वासनामय सृष्टि है, उस सृष्टि को कौन प्रकाशित करता है? साक्षी। तो जो स्वप्न वाली सृष्टि है वो भी दृश्य हुआ, बाहर की जो सृष्टि है जागृत में वो भी दृश्य हुआ, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था जो वो भी दृश्य में आ जाती है। जब सुषुप्ति में जाते हैं उस समय उसमें जो सुख है, सुख का अनुभव और अज्ञान की स्मृति होती है ना जागृत में, उसका भी साक्षी ही दृष्टा है, वो भी दृश्य कोटि में आ गया। तो जितना सकल से है कि जितना भी जागृत सृष्टि है, स्वप्न सृष्टि है, अथवा सुषुप्ति में सूक्ष्म सृष्टि होती है, वहां भी होती है, सूक्ष्म होती है, बीज रूप में होती है, वहां बीज रूप में होती है, सृष्टि तो होती है लेकिन बीज रूप में प्रत्यक्ष नहीं होती। तो जितनी भी सृष्टि है वो पूरे दृश्य है, सभी में आ जाती है, सकल में सभी आ जाते हैं, केवल हमारे को छोड़ करके सभी दृश्य कोटि में आ जाते हैं। तो जब सारा कुछ दृश्य कोटि में है, दृश्य कोटि में है, तो बाकी कौन बचा? एक ही बचा है ना साक्षी, वह दृष्टा है, वास्तव में तो वो ही जानता है, लेकिन वो तो बहुत बाद की बात है ना, उसको जाना तो हमने वहाँ ही है, लेकिन हम तो दृष्टा तो अपने आप को मानते हैं हम ही, लेकिन साक्षी रूप में नहीं मानते, हम ही कहते ना, हमने उसको देखा, इसको देखा, उसको देखा, किसको लेकर के? आंखों के साथ जुड़ करके कहते हैं मैंने देखा, मतलब ये नहीं कहते कि साक्षी रूप में देखा, कहते मैंने आंखों से देखा, आंखों से देखा, मैंने कानों से सुना है, आंखों से देखा है या कानों से सुना है, लगा दो लगाना हो तो, कानों से देख मतलब सुना है, तो हम कान के साथ अटैचमेंट होकर के सुनते हैं, आंख के साथ हमारी शक्ति होती है तब हम सुनते हैं, बोलते तो ये हैं कि कानों से सुना, कानों के द्वारा सुना, जब कानों के द्वारा सुना कहते हैं तो इसका मतलब तो फिर भी है सामान्य रूप से भी कान हमारे से अलग हैं, हम कानों के द्वारा सुनते हैं, कान हमारे सुनने के साधन है, या हमने मन से दुख का सुख का अनुभव किया तो मन के द्वारा किया है, लेकिन जो मन है उसको कौन जानता है? मन को तो कोई जानता है कि मन आज मेरा ठीक नहीं है, उसको भी जानता है, उसको साक्षी भाष्य, इसलिए कहते हैं कि सभी जो सृष्टि है ना, ये सारा दृश्य जो साक्षी भाष्य है वास्तव रूप में, तो दृष्टा कौन हुआ? साक्षी, साक्षी मतलब आत्मा, उसको मतलब अविद्या, जो अविद्या उपाधि वाला है चिदाभास कहते हैं उसको, अविद्या उपाधि वाला और माया उपाधि, दो प्रकार की उपाधि है ना, तो माया उपाधि है ईश्वर की, माया उपाधि वाला जो चेतन है उसको कहते हैं ईश्वर, और जो अविद्या उपाधि वाला है उसको कहते हैं जीव। वैसे तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, दोनों ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अंश एक टुकड़े की तरह नहीं है, अंश का अर्थ तो टुकड़ा होता है ना, यहाँ उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि अंश मतलब टुकड़ा है। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म एव न परः। ब्रह्म जो है वो सत्य है और सकल जो जगत है वो मिथ्या है। जीवो ब्रह्म एव, जो जीव है वह ब्रह्म ही है, न परः। अपरः मतलब अपर नहीं है, अलग नहीं है। भगवान कृष्ण में कहते हैं ना गीता में, ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः, ममैव मम एव अंश, मेरा ही अंश है। और जैसे मैं सनातन हूँ पुरातन हूँ, ऐसे जीव भी सनातन है पुरातन है अनंत है। भाव वास्तव में अभेद है, कल्पित भेद है, वास्तव अभेद है। जीव में और ईश्वर में अथवा ब्रह्म में क्या है, वास्तव जो पारमार्थक जो अभेद है और कल्पित भेद है। तो कल्पित भेद को काटने के लिए क्या चाहिए, कल्पित ही साधन चाहिए। जैसे स्वप्न आया ना, हमारे को स्वप्न आया तो स्वप्न में कहते हैं कि किसी को मानो कोई स्वप्न में हमारे कोई चोट लग जाती है, जख्म हो जाता है ना, चोट लग जाती है कोई स्वप्न में, तो उस स्वप्न वाली चोट को या उस जख्म को उसमें दवाई लगाने के लिए पट्टी करने के लिए कौन सा डॉक्टर चाहिए, स्वप्न वाला चाहिए ना। उसको उस समय हम इस डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे जो जागृत में है, वहाँ जो कुछ वह पट्टी है दवाई है और पैसा भी डॉक्टर को देना है तो कौन सा, स्वप्न वाला ही देना है, नकली देना है ना। तो जो जैसा होगा उसको हटाने के लिए साधन भी वैसा ही चाहिए ना। कल्पित जो प्रपंच है उसको हटाने के लिए जो बनाया गया जितना कुछ है वह सब कल्पित है। उस दिन भी हमने विचार किया था ना कि 52 अक्षर लोक त्रय सब किस इन ही माहे, ए अक्षर खिर जाएंगे ओए अखार इनमें नाहे। ये जितने मतलब जितना प्रपंच है ना, इस प्रपंच का व्याख्यान कौन करते हैं, वाणी करती है ना, ये वाणी का विकार है। वाचारमणम विकारो नामधेय, श्रुति में कहते हैं कि ये जितना जो विकार है ना केवल वाणी का है। जितना भी हम देख रहे हैं ना प्रपंच, जिसको दृश्य हम बोलते हैं, वो किसका विकार है, वाणी का। वाचारमण विकारो नामधेय मृतका एवं सत्यम, वहाँ लिखा है कि जितना मतलब कशोरे बने हैं, घड़ा बना है, सुराही बनी है, जो कुछ भी बना है ना, वहाँ क्या है, मृतका एवं सत्यम, केवल मिट्टी ही सत्य है। बाकी वाचारमणम केवल वाणी का विकार है कि जय कशोरा है, जय घड़ा है, जय सुराही है, जो कुछ भी वहाँ बर्तन है वो केवल वाणी का विकार है। मिट्टी को जो मिट्टी का पिंड है उसको अलग अलग तरह से गोलमोल करके उसका नाम रख देते ना वाणी से, वाणी ने केवल उसको विकार बनाया है नहीं, मृतका ही सत्य है। अलंकार मिल थैली होई है ताते कनक बखानी, गुरु महाराज कहते हैं अलंकार मिल थैली होई है, अलंकार आभूषण गहने मिलकर के बड़ी थैली बना ली, लेकिन ताते कनक बखानी, जो जौहरी है वो उसको आभूषण नहीं कहता, अलग अलग नहीं जानता, वो तो कहता है सोना कितना है, उसको तो सोने से मतलब है, उसके लिए तो वो सोना ही सोना है। तो इसी प्रकार ये जो दृश्य है ना, ये दृश्य जैसा दृश्य है उसको हटाने के लिए वैसा ही साधन है। दृश्य जो सकल दृश्य है ये मिथ्या हुआ ही नहीं, कल्पित है। तो ये जितना मतलब हमारे को बताया जा रहा है ये वाणी का ही तो विकार है। अंत में वाणी कहाँ रहती है, ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास ज्ञान भया
तह कर्म है नाश। जितना कर्म का व्याख्यान है या कर्म करना किसके लिए, ज्ञान के लिए। तो जब ज्ञान हो गया तो फिर कर्म का नाश भाव निवृत्ति हो जाती है, यानी कि कर्म खत्म हो जाते हैं। जिसको ज्ञान हो गया उसके लिए कर्म फल नहीं देता, कर्म तो वो करता ही रहता है। कर्म के नाश का मतलब यही होता है कि ना तो वो कर्म का करता है ना भोगता है, जिसको ज्ञान हो गया। जैसे फल कारण फूली बन राय, फल लागा तब फूल बिलाए। जो फूल आते हैं जितने भी, मंजरी आती है किसके लिए, फल के लिए। जब फल आ जाता है तो फूल और मंजरी सब समाप्त हो जाती है। तो ये जितना कुछ मतलब हमारे को बतलाया जा रहा है ना शास्त्रकार जो बताते हैं, केवल उस भ्रम की निवृत्ति के लिए है, प्राप्ति के लिए नहीं है। प्राप्त हमने कुछ करना नहीं है, क्योंकि पहले ही जो प्राप्त है उसको प्राप्त नहीं करना। प्राप्त की प्राप्ति है और निवृत्त की निवृत्ति है। निवृत्त भी पहले ही है, लेकिन बीच में जो भ्रांति है वे जितना शास्त्र है केवल भ्रांति को हटाने के लिए शास्त्र है। जितने साधन हैं केवल जिसको हमने अपना मान रखा है उसको हटाना है, जो बाकी बचेगा वो हम हैं। बस जो मान रखा उसको हटाने के लिए, मान्यता को हटाने के लिए शास्त्र है सब। हमारी मान्यताएं जितनी है, क्योंकि वो मान्यताएं हमारे मन की है, तो जब उस मान्यताओं को जो कल्पित मान्यताएं हैं उसको हटा देंगे तो फिर हमारा जो यथार्थ स्वरूप है वो बचेगा। तो यही कहा था कि सकल जो दृश्य है सो अध्यास। यहाँ लाओ, यहाँ यहाँ वहाँ नहीं, महाराज जी उधर नहीं, यहाँ यहाँ ये यहीं बैठेंगे। जी तो सकल दृश्य सो अध्यास, संपूर्ण जो दृश्य है वह अध्यास है। तो अध्यास ही तो मूल है, अध्यास की निवृत्ति हो जाएगी तो फिर क्या होगा, उसको छोड़ना मतलब छोड़ देंगे, उसकी निवृत्ति करेंगे, उसका बाध करेंगे भ्रम का। तो फिर उसको छोड़ करके करना क्या है, जैसे कहते हैं ना भाई सत्संग करो, सत्संग से विवेक होता है। तो विवेक किसको कहते हैं, सत्य और असत्य का निर्णय करना, आत्म और अनात्म का निर्णय करना, इसी का नाम विवेक है। तो सत्संग करने से विवेक मिलता है। तो जब सत का संग करना होगा तो सत का संग क्या चीज है, कोई ऐसा नहीं कि जब जैसे हम किसी के साथ जा करके मिलते हैं, ऐसा थोड़ी सत्संग है। सत का संग करना मतलब सत के साथ अभेद होना, वो तो तब होता है जब परिच्छिन्न वस्तु हो तो उसके साथ चले जाओ, उसका संग कर लो, उसके साथ जुड़ जाओ। तो सत का जो संग, सत कैसा है, वो कोई मूर्तिमान तो है नहीं सत, वो तो जो घट घट में व्यापक है ना, जो उसी को सत्य कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं। उसका संग कैसे करना, उसका संग भाव संग का अर्थ वहां है अभेदता, उसके साथ अभेद होना, सत के संग अभेद होना। तो अभेद होना क्या है, जो हमारा संग हो रहा है उसको छोड़ दो, अभेद तो हम हैं पहले ही। तो हमारा पहले संग कहाँ हो रहा है, असत के साथ। असत का त्याग करना ही सत का संग है, और कोई सत का संग नहीं है। असत का त्याग कर दो सत का संग हो जाएगा। तो यहां पर भी जब कहते हैं कि अध्यास को छोड़ दो, जो हमारी इस अनात्मा में परपंच में सत्य बुद्धि हो रही है, रमणीय बुद्धि हो रही है, इसको छोड़ दो तो फिर क्या बचेगा, जग आधार, जो इसका आधार है। एक द्वैत वस्तु बताई, एक दृश्य और दूसरा दृष्टा। तो जब दृश्य से छोड़ देंगे तो बाकी कौन है, जो हम हैं, दृष्टा हैं। दृष्टा में चित्त को जोड़ना भाव अपने आप को, जगता आधार, ब्रह्म कहो, आत्मा कहो, कूटस्थ कहो, साक्षी कहो, वो तो कहने के सब नाम हैं, आधार वही है ना, तो उसके साथ चित्त जोड़ना भाव अपने आप को साक्षी रूप में जानना, दृष्टा रूप में जानना। तो जब संपूर्ण दृश्य में इंद्रियां भी आ जाती हैं, अंतःकरण भी आ जाता है, तीनों शरीर भी आ जाते हैं और तीन अवस्थाएं भी आ जाती हैं, पंचकोश भी आ जाते हैं, इन सब का जो आसक्ति है उसी को छोड़ना ही अध्यास छोड़ना है। ये सब अध्यास है, संपूर्ण दृश्य जो वह अध्यास है, भ्रांति है। तो भ्रांति का कारण क्या है? अज्ञान। मूल कारण जो अज्ञान है, अज्ञान की जब निवृत्ति हो जाएगी तो उसके कार्य की अपने आप निवृत्ति हो जाएगी। कारण सहित जो कार्य जो प्रपंच है इसकी निवृत्ति हो जाएगी तो फिर हम दृष्टा रूप में अपने आप को जानेंगे। तो ये मूल का हमने विचार किया था कल कि ये कैसे अध्यास है, इसमें क्या क्या सामग्री है। दोबारा करें माता जी के आगे चले। हाँ जी स्वामी जी, कैसे करें आगे चलें कि शुरू से करें?
जो जैसा आपका है करें, जो जैसा कर रहे हैं।
आने कल मूल तो हमने विचार लिया था, तो टीका में गए थे। हाँ जी, तो टीका में भी पहले यही कहा, सबसे पहले है कि आत्मा में तीन अवस्थाओं की जो भ्रांति है, भासती है, तीन आत्माएं प्रतीत होती हैं, और किसकी भ्रांति कैसे भासती है आत्मा में, तीन अवस्थाओं का जो आभास हो रहा है, भ्रांति हो रही, अध्यास हो रहा है, वह कैसे हो रहा है। तो एक दृष्टांत दिया कि सीपी में जैसे चांदी अथवा कागज, ये जो अभ्रक भोडल जिसको बोलते हैं, और उसका मतलब यह है कि उसकी जैसे सीपी है ऐसी तरह की वो चीजें हैं सब, केवल उसी के साथ मिलती जुलती उनकी शक्ल है, सीपी की जैसी सीपी ही लगती है देखने को। तो ये जैसे सीपी में भासती हैं उसी प्रकार ये कैसे भासती हैं सीपी में, कल्पित रूप में, अज्ञान से भासती कल्पित रूप में, क्योंकि अज्ञान के द्वारा जो कुछ भी भास रहा वह कल्पित है। तो ये कैसे भासती हैं, तीनों एक समय नहीं भासती सीपी में, ये तीनों एक समय नहीं भासती, इनका परस्पर व्यतिरेक है। पीछे बताया था ना कि ये व्यभिचार है इनका, सीपी में जो भासने वाले पदार्थ हैं ये परस्पर व्यभिचारी हैं। व्यभिचार का अर्थ होता है कि अपने अधिष्ठान को आश्रय को छोड़ करके दूसरी जगह रहना, उसको व्यभिचार कहते हैं। लोक में भी ये शब्द है ना व्यभिचार, ये आदमी व्यभिचारी है। तो व्यभिचारी का अर्थ होता है कि अपने धर्म को छोड़ देता है, दूसरे जगह जाना ही व्यभिचार है अपने अधिष्ठान को। जैसे यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वहनी, ये एक व्याप्ति है ना भाई, जहां जहां धूम रहता है वहां वहां वहनी होती है, अग्नि होती है। ये अन्वय और व्यभिचार, अन्वय और व्यतिरेक आया था ना, अन्वय और व्यतिरेक, तो अन्वय व्यतिरेक का यह दृष्टांत है। अन्वय का दृष्टांत है कि यहां यहां धूम होता है वहां वहां वहनी होती है, भाव जहां जहां उसका कारण है वहां वहां उस कार्य में रहना। तो धूम जहां जहां वहनी रहती वहां वहां रहता है, ये जहां जहां धूम रहता वहां वहां वहनी रहती है, क्योंकि परिच्छिन्न पदार्थ जो है ना उसमें व्यापक की व्याप्ति होती है, वहनी की व्याप्ति है। जहां जहां धूम है वहां वहां वहनी रहती है, ये उसका अन्वय है, संबंध है उसके साथ। और व्यतिरेक क्या है? व्यतिरेक का अर्थ है अभाव, अभेद, ना रहना। यहां जहां धूम रहता वहां वहां तो वहनी रहती है, ये उनका अन्वय है आपस में। परंतु जहां जहां धूम का वहनी है, जैसे लोहे में, लोहे का जो पेंड होता है ना, पेंड लोहे का टुकड़ा, उसको जब तपा देते हैं बिल्कुल लाल हो जाता अग्नि जैसा, वहां वहनी तो है लेकिन धूम नहीं है। यत्र यत्र वहन्या भावा तत्र तत्र धूमा भावा, ये उल्टा हो जाता है। यत्र यत्र वहने का अभाव है वहां वहां धूम का अभाव है, भाव जहाँ जहाँ धूम रहता वहाँ वहनी रहती है, ये तो बात मनती है, लेकिन यहाँ वहनी है वहाँ वहाँ धूम है ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने छोड़ दिया। कहाँ? जैसे वही लोहे का पिंड है, तप्त लोह है, जो लोहे का टुकड़ा जो तप गया बिल्कुल लाल हो गया, वहाँ पर अग्नि तो है लेकिन धूम नहीं है। तो ये कहते हैं कि ये तीन अवस्थाएं जो है इनका व्यभिचार है अपने अधिष्ठान के साथ, अधिष्ठान भाव आश्रय जिसमें ये भासती हैं। ये किसमें भासती हैं? जो ये जैसे सीपी में जो तीन चीजें भास रही है उसमें एक चांदी भासती है या अभ्रक भासता है या कागज भासता है, ये जो तीनों हैं इनका अपने अधिष्ठान के साथ व्यभिचार है, व्यतिरेक है इनका, क्योंकि सीपी में ये तीनों एक समय नहीं भासती, सीपी को छोड़ देती हैं। जब चांदी भासती है तो दूसरी दोनों नहीं भासती, तो इसका मतलब है कि ये व्यभिचारी है, ये व्यापक नहीं है, परिच्छिन्न है, सीपी में नहीं भासती। और केवल सीपी के साथ ही इनका व्यतिरेक नहीं, आपस में भी व्यतिरेक है, क्योंकि तीनों इकट्ठी नहीं रहती, जब एक रहती है तो दूसरी नहीं रहती। तो इसलिए कहते हैं कि ये इनका परस्पर व्यतिरेक है, भेद है, तो ये तीनों एक समय उसमें नहीं भासती, अपने परस्पर भी इनका व्यतिरेक है, और जो इनका आश्रय सीपी है उसके साथ भी इनका व्यभिचार है, व्यतिरेक है, उसमें तीनों एक समय नहीं रहती। ये इन्होंने दृष्टांत दिया, लौकिक दृष्टांत। इसी प्रकार ये कहते हैं, हाँ इसमें और समझने वाली बात है, ये काल में बताया था ना कि जहाँ भी अध्यास होता है उसमें तीन अंश होते हैं, एक तो अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान और दूसरा अधिष्ठान का विशेष अज्ञान। ये बात ध्यान में रखने वाली है, अधिष्ठान जो आश्रय है उसका सामान्य ज्ञान हो, विशेष रूप से अज्ञान हो, वहां पर भ्रांति होती है, कहीं भी किसी भी चीज में कहीं भी हमारे को अध्यास होता भ्रांति होती है, उसमें ये वस्तुएं होती हैं कि जो अधिष्ठान है आश्रय है सामान्य रूप से उसका ज्ञान हो हमारे को और विशेष रूप से अज्ञान हो, तब होती है भ्रांति। यदि अधिष्ठान का विशेष रूप से ज्ञान है तब भी भ्रांति नहीं होती, तो यदि अधिष्ठान का सामान्य रूप में ज्ञान नहीं है तब भी भ्रांति नहीं होती। ठीक है भगत जी, लगा ना, लगी ना बात माता जी, लगी ना बात? अधिष्ठान का जहां पर सामान्य ज्ञान ना हो वहां भी भ्रांति नहीं होती, तो जहां पर अधिष्ठान का विशेष रूप से ज्ञान हो वहां भी भ्रांति नहीं होती। भ्रांति तभी होती है जब सामान्य रूप से ज्ञान हो और विशेष रूप से अज्ञान हो, तभी भ्रांति होती है। तो जहां पर सीपी का हमारे को सामान्य रूप उसका इदम है, इदम सामान्य रूप किसी भी चीज का क्या है, इदम मतलब यह है, यह या वह, यही तो है सामान्य रूप। तो इतना तो हमारे को ज्ञान है कि यहाँ कुछ है, लेकिन यह नहीं है कि सीपी है, यहाँ है कुछ। अधिष्ठान का सामान्य रूप में ज्ञान है कि यहाँ कुछ पड़ा है, ये इदम पना है उसका, सीपी का इदम पना है ये। तो ये हमारे को केवल सामान्य रूप से उसका ज्ञान है सीपी का, विशेष रूप से नहीं है कि यह सीपी है, तभी हमारे को भ्रांति हो रही ना, सामान्य रूप से ज्ञान होने से उसमें यह तीनों चीजों भासती है। ये कहते हैं कि सीपी का जो इदम अंश है उसका इन तीनों में अनुसूतपना है, उसका इदम अंश पहले भी रहता है जब भ्रांति होती तब भी रहता है, यानी भी उस समय हट जाता है, पहले किस रूप में था यहां कुछ है तो बाद में किस रूप में आ गया, भ्रांति से पहले इदम पना कैसे उसमें व्याप्त है यह कुछ है, तो जब भ्रांति हुई तो इदम जो है वो किस रूप में है, यह सर्प, यह चांदी है, यह अभ्रक है, यह कागज है, यह जो इदम पना है वो अभी भी है भ्रांति काल में भी, तो जब भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है तब भी इदम पना है यह सीपी है, तो तीनों समय में इदम पना है उसका, यही सामान्य, उसका सामान्य अंश तीनों में है, तीनों समय में है। लेकिन पहले उसको सामान्य रूप में जानते जह कुछ है, तो फिर सामान्य अंश तो यह हुआ इस रूप में, विशेष अंश हुआ यह सीपी है, यह विशेष अंश हुआ। तीन अंश है ना, एक सामान्य, एक विशेष, दूसरा कल्पित विशेष। तो सामान्य तो है यह कुछ है, और विशेष है यह सीपी है, और कल्पित विशेष क्या है, यह चांदी है। यह कल्पित है, विशेष तो यह भी है, विशेष होता है विशेषण के साथ इसका ज्ञान होता है, यह के साथ विशेषण क्या लग गया, जैसे वो चांदी लागो अभ्रक लगा दो, कोई ना कोई उसमें साथ में विशेषण लगा, विशिष्ट ज्ञान हो गया ना, विशेष बन गया वो, जिसमें विशेषण और विशेष रहते उसको विशिष्ट कहते हैं। तो जहां पर विशिष्ट ज्ञान हो रहा है ना, दो दो चीजें हैं इसमें, सामान्य और विशेष मिलके दोनों विशेषण। जैसे स्वामी जी कल कह रहे थे दंडी पुरुषा, एम दंडी पुरुषा, ये दंडी मतलब दंड वाला पुरुष है, तो दंड उसका विशेषण है ना, तो ये विशिष्ट ज्ञान हुआ विशेषण और विशेष्य का, विशेषण है दंड और विशेष्य है पुरुष, तो दोनों को मिला करके विशिष्ट ज्ञान हुआ, सामान्य नहीं रहा, विशेष ज्ञान हो गया। सामान्य तो इतना है कि यह है, ये सामान्य है, यही कहते हैं कि जहां पर तीन अंश हैं, तो ये जो आपस में अपने अधिष्ठान में तीनों चीजें एक समय नहीं भासती, ये तो इनका व्यतिरेक है अधिष्ठान के साथ, और जो अधिष्ठान इनका सीपी का इदम अंश है, उनका इन तीनों के साथ क्या है, अनुसूतपना है, वो तीनों के साथ भासता है। जब कहते हैं यह चांदी है तब भी, यह अभ्रक है तब भी, यह कागज है, तो तीनों के साथ उसके इदम अंश की अनुसूतता है, व्यापकता है, पर इनका व्यतिरेक है, ये तीनों इकट्ठी नहीं भासती। तो ये कहते हैं कि सामान्य अंश, विशेष अंश और कल्पित विशेष अंश, तीन अंश हैं जो, उनका थोड़ा सा हमारे को कहते बताइए कि सामान्य अंश क्या है। तो सामान्य अंश उसको कहते हैं जो अधिक समय तक प्रतीत होता है, मोटी भाषा में जो ज्यादा समय तक प्रतीत होता है उसको सामान्य अंश कहते हैं। वो कहाँ पर होता है सामान्य अंश जो है, वो भ्रांति काल में प्रतीत होता है, भ्रांति काल में प्रतीत होता है, भ्रांति काल के अभाव काल में, भ्रांति काल में भी प्रतीत होता है, तो जब भ्रांति हट जाती है तब भी प्रतीत होता है। भ्रांति काल में तो यह चांदी है इस रूप में होता है, और भ्रांति के अभाव काल में यह सीपी है इस रूप से प्रतीत होता है। इदम जो सामान्य अंश है उसको कहते हैं सामान्य अंश जो अधिक समय तक प्रतीत होता है, और उसके बाद कहते हैं कि जो न्यून काल में प्रतीत होता है वह क्या है, वह विशेष अंश है। न्यून काल में होता वो भाव थोड़े काल में होता, बहुत कम समय में वो प्रतीत होता है, उसके बाद उसकी प्रतीति नहीं होती। वो कैसे है, भ्रांति काल में जैसे हमारे को जो सीपी होती है नील पृष्ठ होती है, उसकी जो पीठ होती है ना नीली होती है, नीले रंग की होती है, और तीन कोण वाली होती है सीपी, आपने देखी होगी समुद्र के किनारे पड़ी होती है जो, और पीछे से नील लगती है और उसका तीन त्रिकोणी होती है। तो जब हमारे को भ्रांति काल होता है ना, उस समय जो नील पृष्ठ है अथवा तीन कोण आदि उसके जो चिन्ह है ना, वो दिखाई नहीं पड़ते, उस समय नहीं दिखाई पड़ते। तो इनकी प्रतीति से क्या होता है, जब हमारे को नील उसका रंग है या त्रिकोण आकार की है, जब ये हमारे को दिखाई पड़ जाता है तो भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है। तो इसलिए यह जो विशेष अंश है ना, ये थोड़े समय में प्रतीत होता है, अधिक काल तक नहीं प्रतीत होता। तो जब जो न्यून समय में प्रतीत होता है, जिसकी प्रतीति से भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है, वह विशेष अंश है, वह विशेष ज्ञान है, इसको अधिष्ठान भी कहते हैं। जो सामान्य अंश है उसको आधार कहते हैं, और जो विशेष है उसको अधिष्ठान कहते हैं। अधिष्ठान के ज्ञान में जो प्रतीत नहीं होता, अब तीसरा कौन सा बता, कल्पित विशेष, सामान्य हो गया और विशेष हो गया, तीसरा बचा कल्पित विशेष। कल्पित विशेष कौन है, अधिष्ठान के ज्ञान में जो प्रतीत नहीं होता वो कल्पित विशेष भाव। जब अधिष्ठान का ज्ञान हो जाता है उस समय जिसकी निवृत्ति हो जाती है, जो उस समय प्रतीत नहीं होता, जैसे अधिष्ठान जो सीपी है उसका जब ज्ञान हो गया तो उसमें जो कल्पित था आरोपित था वो हट गया, उसमें चांदी हो अभ्रक हो या कागज हो, यही कल्पित थे ना आरोपित थे, कल्पनाधीन की ये हट गए, ये कल्पित विशेष हैं। तो कहीं भी हमारे को भ्रांति होती है तो उसमें कल्पित विशेष तो बचेगा नहीं, बचेगा सामान्य अंश और विशेष अंश। ये कहते हैं कि उसी प्रकार सिद्धांत में आइए आप, ये तो आपने दृष्टांत में समझा, और दृष्टांत में समझेंगे कैसे कि ऐसे ही अधिष्ठान रूप जो आत्मा है उस आत्मा में जागृत स्वप्न अथवा सुषुप्ति, ये तीनों भ्रांतियाँ, ये भी भ्रांति है ना, अध्यास है, भ्रम है, ये भी, ये तीनों जो भ्रांतियाँ हैं आत्मा के अज्ञान में होती है, वैसे नहीं होती। ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि जो भ्रांति होती है आत्मा के अज्ञान से होती है, क्योंकि पहले हम समझ चुके हैं कि जब अज्ञान हो तभी अध्यास होता है, विशेष जो अधिष्ठान उसका अज्ञान हो विशेष रूप से तभी होता है, और सामान्य रूप से ज्ञान हो, सामान्य रूप से तो बच्चे को भी पता है आत्मा के ज्ञान का, बच्चा भी कहता है जब आवाज देंगे तो कहता मैं हूं, ये उसको सामान्य ज्ञान है आत्मा का, पर मैं सच्चित आनंद ब्रह्म हूं ऐसा विशेष ज्ञान नहीं, विशेष रूप से अज्ञान है सभी प्राणियों को सभी जीवों को, तभी हमारे को भ्रांतियां हो रही सब। यही कहते हैं कि ये सब अज्ञान से भासती है, विशेष रूप से अज्ञान से, बिल्कुल अज्ञानी नहीं है हम लोग, सामान्य रूप से तो ज्ञानी है लेकिन विशेष रूप से अज्ञानी है, इसलिए भ्रांति होती है। इसलिए कहते हैं कि शास्त्र जो है जहां महात्माओं का उपदेश किसके लिए, ना मूर्ख के लिए और ना ज्ञानी के लिए, दोनों के लिए नहीं, जो ज्ञानी है उसको भ्रांति नहीं है और जो अज्ञानी है उसको भी भ्रांति नहीं है, क्योंकि सामान्य ज्ञान हो विशेष रूप से अज्ञान हो तभी भ्रांति होती है, जो बिल्कुल अज्ञानी है कोरा उसको भी भ्रांति नहीं, उसके लिए शास्त्र नहीं है, जो ज्ञानी हो गया उसके लिए भी शास्त्र नहीं। शास्त्र किसके लिए, जिज्ञासु के लिए, जो जिज्ञासु है वह सामान्य रूप से जानता है लेकिन विशेष रूप को जानना चाहता है, इसलिए उसके अंदर असंभावना विपरीत भावना परमाता प्रमाण परमेय में उसी को संशय होता है, तो उसके लिए है। तो ये कहते हैं कि ये जितनी भ्रांतियां हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये आत्मा में उसके अज्ञान काल में प्रतीत होती हैं, इनका परस्पर और जो अधिष्ठान आत्मा उसके साथ इनका व्यतिरेक है, भेद है, जैसे पहले बताया था कि इन तीनों का आपस में भी भेद है। जब जागृत है तो स्वप्न सुषुप्ति नहीं है, जिस समय स्वप्न है उस समय जागृत नहीं है सुषुप्ति नहीं है, जिस समय सुषुप्ति है उस समय जागृत नहीं है स्वप्न नहीं है, ये इनका परस्पर भेद है आपस में। और जो इनका अधिष्ठान है आत्मा उसके साथ भी इनका व्यतिरेक है, क्योंकि आत्मा जागृत में भी है, क्योंकि जागृत में भी उसकी सत्ता से ही सबका ज्ञान हो रहा है, और स्वप्न में भी साक्षी रूप में वही प्रकाश कर रहा है, और सुषुप्ति रूप में सुषुप्ति में भी, तो अवस्थाएं तो तीनों व्यभिचारी हैं, एक दूसरे को छोड़ के रहती हैं, परंतु आत्मा तीनों में व्याप्त है, जैसे पुष्प में धागा है सूत्र है, माला में जैसे धागा है उसी प्रकार ये सब सूत एक मान सात सहंस जैसे ओत पोत प्रभ सोई, सब गोविंद है सब गोविंद है गोविंद बिन नहीं कोई। तो एह पर पंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन न होई। तो इसी प्रकार ये कहते हैं कि ये अवस्थाएं व्यभिचारी हैं, और जो इनका अधिष्ठान है आत्मा साक्षी दृष्टा उसी को बोलते हैं, लेकिन आगे जा करके स्वामी जी बताते थे ना वहाँ प्रवचन में कि दृष्टा भी अदृष्टा हो जाता है, जो माता अमाता हो जाती है, पिता अपिता हो जाता है। ये श्रुति में आया है कि दृष्टा भी अदृष्टा हो जाता है, माता भी अमाता हो जाती है, पिता भी अपिता हो जाता है, श्रोता भी अश्रोता हो जाता है। ये बृहदारण्यक में आया कि जब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो दृष्टा भी अदृष्टा हो गया, क्योंकि दृष्टा तब तक है दृश्य की अपेक्षा करके। जब दृश्य मान रहा है ना इन पदार्थों को, जैसे पांच कोश हैं, तीन अवस्था है, तीन शरीर हैं, इनको जब तक हम दृश्य रूप में देख रहे हैं तभी तो दृष्टा हैं। लेकिन जब तक द्वैत है ना तब तक नहीं हम पूरी स्थिति को प्राप्त हो सकते। ये केवल समझाने के लिए महात्मा लोग कहते हैं कि अपने आप को साक्षी मानो, लेकिन साक्षी को हमने ब्रह्म के साथ अभेद करना है। वो आगे की बात है, लक्षणा से होता जो आपने पढ़ाई है। जब साक्षी का और कुटस्थ का और ब्रह्म का और जीव का जो जानने वाला उसको साक्षी कहते हैं, ईश्वर का जानने वाला ब्रह्म है। तो इसलिए ब्रह्म का जो है और साक्षी के साथ अभेद होता, जीव के साथ नहीं होता। जीव ईश्वर का दोनों का अभेद नहीं होता, ब्रह्म का और साक्षी का अभेद होता है। क्योंकि जीव और जो ईश्वर नाम पड़ गए हैं ये उपाधि के कारण पड़े हैं, ये जब हटेंगे। इसी प्रकार जब तक हमारे को समझने समझाने के लिए दृष्टा कहा जाता है, वैसे जब हम स्थित हो जाएंगे अपने स्वरूप में तो फिर दृश्य नहीं तो दृष्टा भी नहीं। तो जब तक दृष्ट और दृष्टा रहेंगे तो द्वैत रहेंगे, तब तक एक नहीं मान सकते। एक तो तभी होगा जब दृश्य दृष्टा शेक स्वामी जो कुछ भी भाव जो द्वंद है ना, द्वंद जब द्वंद हट जाएगा तब एक ही बचेगा। तो ये केवल पहले तो यही करना पड़ेगा अभ्यास कि मैं दृष्टा हूं, इस प्रपंच का मैं दृष्टा हूं, ये प्रपंच जो दृश्य है। तो दृश्य दृष्टा भाव पहले बनाना साक्षी रूप में, पर जब हम साक्षी हो जाएंगे तो उस साक्षी पने का अभ्यास करते करते फिर ना दृश्य पना रहेगा ना दृष्टा पना रहेगा। जैसे बताते हैं कि जो वृत्ति है वो क्या करती है, जो हमारी वृत्ति जब बाहर निकलती है किसी विषय को विषय करने के लिए, तो वह विषय को प्रकाशित नहीं करती। दृष्टि क्या करती है, हमारी जो वृत्ति है केवल विषय आकार को धारण करती है, विषय का आवरण भंग करती है, विषय को प्रकाशित नहीं करती, क्योंकि वह जड़ है, वह स्वयं जड़ है। तो जो प्रकाशित करता है वो कौन है, साक्षी वृत्ति अरूढ़ चेतना, जो वृत्ति के ऊपर अरूढ़ है, जिसको सत्ता पा करके वृत्ति बाहर जाती है, प्रकाशित वो करता है। अब प्रकाशित कब करता है, जब विषय चेतन और वृत्ति अरूढ़ चेतन एक होते हैं। वैसे नहीं, वहां भी चेतन बैठा है ना, जो सामान्य चेतन है वो वहां बैठा है और उसी में एक विशेष चेतन भी बैठा है। जो विषय चेतन है वो विशेष है और विषय चेतन विषय के जो विषय है और विषय चेतन के सहित जिसमें रहता है वो सामान्य चेतन है। और विषय चेतन विषय अवचिन्न चेतन, वृत्ति अवचिन्न चेतन और अंतःकरण अवचिन्न चेतना, जब ये तीनों इकट्ठे होते हैं तब प्रकाश होता है। तो वृत्ति भी जड़ है। उसी प्रकार जो दृश्य और दृष्टा भाव है ना, ये तो केवल बताने के, जैसे कहते हैं ब्रह्माकार वृत्ति हो गई, तो ब्रह्मा आकार को धारण किया वृत्ति ने, प्रकाश नहीं किया किसी को। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति तो है, फल व्याप्ति नहीं है। फल व्याप्ति का विषय ब्रह्म नहीं है, वृत्ति व्याप्ति का विषय है। शंकराचार्य जी ने वहां भाष्य में शंका उठाई कि ज्ञानी या जिज्ञासु और पशुओं में क्या भेद है। पशुओं को तो बुद्धि है, उनको भी बुद्धि है ना जानने की, लेकिन पशु बुद्धि वाले को विशेष ज्ञान नहीं होता। जो ब्रह्म है वो वृत्ति का विषय कहते कैसे हुआ। आप कहते कि ब्रह्म अविषय है, ये कहा जाता कि ब्रह्म किसे इंद्रियों का विषय नहीं है, वह स्वयं प्रकाश है। जब स्वयं प्रकाश है तो कैसे आप कहते हैं कि वृत्ति से उसको जानो? नहीं ना जाना जाएगा। जब नहीं जाना जाएगा तो आपके शास्त्र सब व्यर्थ हो जाएंगे। क्यों आपने शास्त्र बनाए? ब्रह्म तो सब अविषय है, किसी ग्रंथ का विषय नहीं हो, किसी प्रमाण का विषय नहीं है, स्वयं प्रमाण है वो। तो फिर शंकराचार्य जी ने उत्तर दिया कि सामान्य रूप से नहीं है, सामान्य रूप से तो जानते हैं सब, लेकिन विशेष रूप से वृत्ति का विषय है, बुद्धि का विषय विशेष रूप से है, सामान्य रूप से नहीं। सामान्य रूप से तो वो अज्ञान का भी विरोधी नहीं है। जो अज्ञान है किसी भी चीज का, उसको नष्ट करने के लिए सामान्य ज्ञान से वो अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। किसी भी चीज का जो अज्ञान है उसकी निवृत्ति सामान्य ज्ञान से नहीं होती। सामान्य ज्ञान तो अज्ञान का पोषक है, सामान्य ज्ञान तो अज्ञान को प्रकाशित करता, क्योंकि नहीं है ये अज्ञान है ना, इसको भी प्रकाशित करता है। सामान्य ज्ञान तो नहीं कभी उसका विरोधी हो सकता, विशेष ज्ञान उसका विरोधी है। तो जो विशेष ज्ञान होगा उसकी तो निवृत्ति होगी, तभी बात बनेगी। विशेष ज्ञान का अर्थ उसमें विशेषण लगा हुआ है, जब विशेषण विशेष भाव बनेगा तो द्वैत हो जाएगी। जब विशेषण विशेष भाव से विशिष्ट ज्ञान होता ना, विशिष्ट ज्ञान में विशेषण ज्ञान कारण है, तो जब विशेष ज्ञान उसकी निवृत्ति करता है तो वो वृत्ति ज्ञान है। विशेष ज्ञान का अर्थ है वृत्ति ज्ञान, विशेष ज्ञान कहीं होगा उसको कहेंगे वृत्ति ज्ञान। तो जिसमें वृत्ति विशेषण लगी है वो द्वैत है। इसका मतलब है कि वृत्ति ब्रह्माकार होती है, लेकिन ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, उसको प्रकाशित नहीं करती, उसको व्याप्त है वृत्ति। जो है वृत्ति व्याप्ति का मतलब वृत्ति ब्रह्माकार होती है। हमारी वृत्ति ब्रह्माकार होती है, लेकिन जब ब्रह्म स्वयं प्रकाश हो जाता है तो वो जैसे फिटकड़ी होती ना, उसको पानी में डालते हैं पानी साफ करने के लिए, तो क्या होता, फिटकड़ी वहां रहती है, उसको साफ करके स्वयं उसी में मिल जाती है। इसी प्रकार जो वृत्ति है वो ब्रह्माकार जब होती है तो ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, तो स्वयं निवृत्त हो जाती है। केवल वो आवरण भंग करती है। जो हमारी वृत्ति पहले विषयाकार हो रही थी ना, अब विषय विषय का आवरण भंग कर रही थी वो, अब उसने जो ब्रह्म का हमारे अंदर ब्रह्म था उसको भंग किया, केवल आवरण को, लेकिन ब्रह्म स्वयं प्रकाश है। बाकी जगह तो ये नियम नहीं लगता, विषयों में वहां तो वृत्ति आवरण को भंग करती है और साक्षी उसको विषय को प्रकाशित करता है, लेकिन यहां पर ब्रह्म को वो करती है आकार धारण करती है, लेकिन साक्षी तो जहां नहीं है ना, लेकिन साक्षी तो स्वयं उसी की आभा है, उसी की प्रतिभा है, उसी का प्रतिबिंब है। जहां जब वृत्ति आवरण भंग करती है तो चिदाभास स्वयं उसमें मिल जाता है अपने रूप को छोड़ के, तो केवल ब्रह्म ही बचता है। इस प्रकार हम जानेंगे। तो ये कह रहे हैं कि जहां तीन अंश हमने समझ लिए, सिद्धांत में तीन अंश इसी प्रकार समझ रहे हैं कि ये जो तीन अवस्थाएं रूप भ्रांति है, इनका परस्पर भी व्यतिरेक है, एक दूसरे के साथ भी और अपने अधिष्ठान के साथ भी इनका व्यतिरेक है। कैसे? जागृत जब भासती है अवस्था तो उस समय स्वप्न सुषुप्ति नहीं है, जिस समय स्वप्न है उस समय जागृत और सुषुप्ति नहीं है, और जिस समय सुषुप्ति है उस समय जागृत और स्वप्न नहीं है। ये इन तीन अवस्थाओं का परस्पर व्यतिरेक है, एक दूसरे के साथ ना रहना, और अधिष्ठान में इन तीनों अवस्थाओं का पारमार्थिक अत्यंत अभाव है। अधिष्ठान में इन तीन अवस्थाओं का क्या है? पारमार्थिक अत्यंत अभाव है। ये तीनों है ही नहीं, अत्यंता का मतलब कभी भी नहीं है, पारमार्थिक रूप से नहीं है, है ही स्वरूप से ही नहीं है, ये स्वरूप से ही अध्यस्त है, केवल संसर्ग से संबंध से नहीं, स्वरूप से ही अध्यस्त है ही नहीं तीनों कालों में। ये क्या है? ये इन तीन अवस्थाओं का अधिष्ठान के साथ व्यतिरेक है। परस्पर को यह व्यक्ति रह कह के एक दूसरे के साथ नहीं रहती, और अधिष्ठान में ये तीनों है ही नहीं तीनों कालों में, इसलिए इनका परस्पर भी व्यतिरेक है और अधिष्ठान के साथ भी व्यतिरेक है, और आत्मा का इन तीनों में अन्वय है। अन्वय का मतलब व्यापकता है, अनुसूतता है, जैसे पुष्प में धागा है ना पुष्पों में, उसी प्रकार ये आत्मा तीनों में ओत प्रोत है। तो ये कहते हैं कि यहाँ पर भी तीन अंश हैं, सामान्य अंश, विशेष अंश और कल्पित अंश। तो उसका थोड़ा सा समझाइए बात भी कैसे है। सामान्य अंश को हम कैसे देखेंगे, सामान्य अंश है इदंपना, कैसे है, जैसे कहते जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, ये जो है पना है ना, है पना, यही सामान्य अंश है। ये जब हमारे को भ्रांति काल हो रहा ना, उस समय में ये भास रहा है रूप में, भ्रांति की निवृत्ति में भी, भ्रांति काल में तो भास रहा है, जागृत है, स्वप्न है, और भ्रांति की जब निवृत्ति होती है, भ्रांति का अभाव होता, तो उस समय मैं सत हूं, मैं चित हूं, मैं आनंद हूं, इस रूप में भास रहा है। तो अधिक काल में जो भासता है, ये बताया था, वह सामान्य अंश है, उसी को आधार कहते हैं, उसी को आधार कहते हैं। ये जो सामान्य अंश है यह ही आधार है, भाव जो भ्रांति काल में भी भासता है और भ्रांति के अभाव में भी भासता है, उसको कहते हैं सामान्य अंश। और उसके बाद कहते हैं जैसे चेतन जो विशेषण है ब्रह्म के, सत है, चित है, आनंद है, असंग है, मुक्त है, शुद्ध है, बुद्ध है, ये जो विशेषण है इनकी प्रतीति भ्रांति काल में नहीं होती। जिस समय हमारे को जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, पांच कोश की, तीन शरीरों की इत्यादि जो भ्रांतियां हो रही है, उस समय चेतन, आनंद, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त ये विशेषण नहीं भासते, इनकी प्रतीति से भ्रांति की निवृत्ति होती है। जब हमारे को सत, चित, आनंद जो विशेषण है उनको, उनकी प्रतीति हो जाती है, तो उस समय भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए जो चित है, आनंद है, असंग है, मुक्त है, बुद्ध है, ये जो विशेषण है इनकी प्रतीति, ये जो अंश है ये क्या है, विशेष अंश, क्योंकि ये विशेषण है, विशिष्ट ज्ञान है, ये थोड़े समय के लिए होता है, इसलिए ये विशेष अंश है। बाद में तो ऐसा नहीं रहता ना, ये तो केवल समझाने के लिए ना विशेष इसलिए कहा, ये थोड़े के समय के लिए है ना। ये जो विशेषण है, शंकराचार्य जी ने वहां इनका विवेचन कर दिया भाष्य में जाकर के उपनिषद में, ये विशेषण नहीं है ब्रह्म के, ऐसा कहते मत समझना कि ये विशेषण है। यदि विशेषण रहेंगे तब भी द्वैत रहेगा, यदि इनको आप विशेषण मानोगे तो आत्मा विशेष हो जाएगा, तो विशिष्ट ज्ञान हुआ कि नहीं। जैसे सत्यत आनंद हम कहेंगे ब्रह्म के विशेषण है, तो दंडी का विशेषण क्या है, दंडा, तो डंडा अलग है, दंडी अलग है, पुरुष अलग है ना, डंडा उसने पकड़ा हुआ, पुरुष अलग है, तो दो हो गए, द्वैत हो गई। तो यदि कहेंगे भी आत्मा कैसा है, सत है, चित है, आनंद है, जो उसके विशेषण मानेंगे, तो ये केवल ये भी समझाने के लिए, इसलिए कहते हैं ये विशेष अंश है। विशेष जो आदमी होता है ना कोई भी संसार में, कहते हैं ये विशिष्ट पुरुष है, ये विशिष्ट अतिथि है, विशिष्ट अतिथि है, तो जितना विशिष्ट होता है उतना परिच्छन होता है, परिच्छन होता है, जितना ज्यादा विशिष्ट होता जाएगा उतना परिच्छन होता जाएगा, उसका दायरा कम होता जाएगा। लगता है हमारे को भी दायरा बढ़ रहा है, लेकिन जितना विशिष्ट होता जाएगा ना, जितने उसके साथ उपाधियां जुड़ती जाएंगी उसका दायरा कम हो जाएगा, जितना सामान्य होता जाएगा उसका दायरा बढ़ता जाएगा। सामान्य आदमी बिना पूछे, बिना कहे, बिना किसी के अधीन हुए कहीं भी जा सकता है, लेकिन विशिष्ट नहीं जा सकता। उसको गाड़ी चाहिए, उसको बॉडीगार्ड चाहिए, उसको सेवादार चाहिए, उसको भोजन अपनी स्वतंत्रता से नहीं खा सकता, उसका भोजन भी टेस्ट करना पड़ता, भी इसमें कुछ बड़ा तो नहीं। तो कौन बड़ा हुआ, सामान्य बड़ा हुआ कि विशेष बड़ा हुआ? हम कहते कि ये बड़ा है, हम तो यही समझते ना,
कि ये कोई विशिष्ट अतिथि है तो बहुत बड़े होंगे, लेकिन हमारे से बड़े कहाँ हैं? हमारे से बड़े नहीं हैं, उनको तो लेख के आना पड़ता है। उनका दारा जो है दौरे के लिए अनुमिशन परमिशन चाहिए, उनके लिए बॉडीगार्ड चाहिए, उनके लिए मतलब सेना चाहिए, सब प्रबंध चाहिए, इसलिए वो थोड़े समय के लिए विशिष्ट है। जब उसमें से विशेषण हटा दो तो वो सामान्य हो जाएगा, वही आदमी होता है। जब उसमें से उपाधि हट जाती तो केला घूमता है वो। इसलिए ये कहते हैं भी विशेष अंश जो है ना वो भी समझने के लिए है, अंत में विशेषपना में नहीं रहता। तो जो थोड़े समय के लिए छत है, चित है, आनंद है, असंग है, मुक्त है, ये जो अंश है इसको कहते हैं विशेष अंश। एक सामान्य हुआ, एक विशेष अंश हुआ। तो जो तीन अवस्था रूप ये जो विशेष अंश है इसको कहते हैं अधिष्ठान, सामान्य इसको कहते हैं आधार, और जो तीन अवस्था रूप प्रपंच है ब्रह्म से अभिन्न आत्मा के अज्ञान काल में प्रतीत होता है। जो तीन अवस्था रूप प्रपंच है वो उसकी प्रतीति कब होती है? जिस समय ब्रह्म से अभिन्न आत्मा का अज्ञान है उस समय इनकी प्रतीति होती है। और मैं ब्रह्म हूं ऐसे आत्मा के ज्ञान काल में ये तीन अवस्थाएं आत्मा से भिन्न प्रतीत नहीं होती। अतः यह तीन अवस्था रूप प्रपंच क्या है? कल्पित विशेष है, विशेष भी है क्योंकि थोड़े समय के लिए भासता है ना, यह जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, थोड़े समय के लिए भासता है पर कल्पित भी है। एक केवल विशेष है, एक कल्पित विशेष है। वो जो विशेष है वो तो रहेगा, भले वो सामान्य में मिल जाएगा लेकिन रहेगा, वो सत्य है, उस जाना नहीं है कहीं, लेकिन ये जो कल्पित है ये नहीं रहेगा। कल्पित का मतलब आरोपित है, मिथ्या है, कल्पना किया हुआ है, झूठा है। तो ये तीनों हमारे को समझ लेना अलग अलग कि सामान्य अंश, विशेष अंश और कल्पित विशेष अंश। इस प्रकार हम समझेंगे ये तीन अवस्था रूप प्रपंच आत्मा में कैसे भासता है। अब ये कहते हैं कि आत्मा में मिथ्या प्रपंच की प्रतीति में कोई और दृष्टांत बताइए। आपने सीपी में चांदी का दृष्टांत तो बताया, कहते इसमें कोई और भी समझाइए जैसे हमारे को और स्पष्ट हो जाए। तो दूसरा दृष्टांत आपने सुना ही है कई बार, स्थाणु में पुरुष। स्थाणु कहते जो ठूंठ होता है, टूटा हुआ वृक्ष खड़ा होता ना कहीं रास्ते में, उसको स्थाणु बोलते हैं, टूटा हुआ वृक्ष होता ना, जैसे मुड बोल देते हैं पंजाब में, इतना खड़ा है वो। तो दूर से जब हम जाते हैं अंधेरे में तो लगता है कोई खड़ा है, उसको देख करके हमारे को संशय होता है। संशय किसको कहते हैं? संशय किसको कहते हैं? नहीं, भ्रांति तो है लेकिन संशय में और भ्रांति में अंतर क्या
है? नहीं प्रतीत होती।
नहीं, संशय का डेफिनेशन क्या है? डाउट तो उसका पर्यायवाची है। संशय संस्कृत में कहते हैं, डाउट इंग्लिश में कहते हैं। संशय का अर्थ होता है कि एक अधिष्ठान में दो कोटि का ज्ञान, उसको संशय कहते हैं। एक अधिष्ठान में दो कोटि का ज्ञान जहां होता है उसको संशय कहते हैं। यहां पर एक अधिष्ठान है स्थाणु, स्थाणु वा पुरुषो वा, दो कोटि का ज्ञान हो रहा ना, स्थाणु वा पुरुषो वा, ये स्थाणु है कि पुरुष है, ये वृक्ष है कि पुरुष है। एक अधिष्ठान में दो कोटि के ज्ञान को संशय कहते हैं। यहां पर संशय हो रहा हमारे को कि ये पुरुष है कि स्थाणु है, तो ये कहते दूसरा दृष्टांत है। इसमें समझने में मिथ्या प्रतीति में, जैसे स्थाणु में पुरुष की प्रतीति होती है, स्थाणु वा पुरुषो वा, तो जब तक हमारे को निश्चय नहीं होता उस अधिष्ठान का तब तक हम कहते हैं कि स्थाणु है कि पुरुष है। जब हमारे को देख करके अच्छी तरह पता चल जाता कि स्थाणु है या पुरुष है तो एक कोटि निवृत्त हो जाती है। पुरुष होगा तो स्थाणु नहीं रहेगा, जब स्थाणु होगा तो पुरुष नहीं रहेगा। इसी प्रकार हमारे यहाँ पर जो तीन अवस्थाएं रूप प्रपंच है, जब हमारे को साक्षी रूप में हमारा ज्ञान हो जाएगा तो ये नहीं बचेंगे।
और दूसरा दृष्टांत और बताते हैं साक्षी में, जैसे स्वप्न, जो स्वप्न है वह साक्षी में ही है, साक्षी में उसकी प्रतीति हो रही है, वो उसका कोई और सामग्री थोड़ी है, वो तो वासना है ना, केवल वासना। तो वासनाएं कहाँ हैं? अंतःकरण में। तो अंतःकरण को प्रकाश कौन कर रहा है? साक्षी। उसी में वो भास रहा है, उसी में, साक्षी में ही है, साक्षी में ही अंतःकरण, साक्षी उसको भासित करने वाला है, क्योंकि साक्षी उसका अधिष्ठान है ना, इसलिए उसी में है वो। जैसे स्थाणु अधिष्ठान है ना संशय का, उसी प्रकार अधिष्ठान में ही है वो, अधिष्ठान तो उसका वही है, कूटस्थ उसका साक्षी है, जो कूटस्थ है वही उसका अधिष्ठान है, तो उसी में ही है। जैसे कहते स्वप्न में साक्षी में स्वप्न की प्रतीति, उसी प्रकार प्रपंच की प्रतीति आत्मा में हो रही है, क्योंकि आत्मा इसका आधार है, अधिष्ठान है, तो उसी में ये भासता है। तो अध्यस्त का जो अध्यस्त का अभाव कहाँ होता है? अधिष्ठान रूप ही होता है। कल्पित का अभाव क्या होता है? आधार रूप होता है। कल्पित कहाँ चले जाता है? आधार रूप ही हो जाता है वो, और कहीं नहीं जाता। जो कल्पित सर्प है उसका अभाव क्या है? रसी रूप तो है, उसका अभाव ये थोड़ी कि पहले था तो और कहीं उड़ गया, वो था ही नहीं, वो हाँ रस्सी ही थी पहले ही। इसी प्रकार कहते हैं कि, और तीसरा और देते हैं कि, जैसे मरुभूमि में जल है, मारुस्थल का जल, वो कैसे होता? मारुस्थल में तो हम पता नहीं गए हैं कि नहीं गए हैं, यहीं पर होता है। कई बार जब बिल्कुल गर्मी के दिन होते हैं ना, जेठ आषाढ़ के, उस समय आप गाड़ी में जा रहे हो रोड पर, जो बिल्कुल साफ रोड होता है, तो हम आपने को थोड़ा दूर से लगता है कि आगे पानी है। कई बार हमने खुद देखा है ये बात, आगे लगता कि पानी है रोड में, जब वहां जाएंगे तो लगता आगे पानी है, पानी होता नहीं है कहीं भी, लेकिन लगता है, थोड़ा थोड़ा आगे जाएंगे तो थोड़ा आगे लगता है। तो उसी प्रकार ये कहते हैं कि जैसे मरुस्थल का जल है ना, उसने कभी किसी की प्यास नहीं बुझाई, कभी उस पानी से, कभी कोई कहे मैं वो पानी पी लूं, कहाँ है ही नहीं वो, उसने कभी किसी की प्यास दूर नहीं की, इसका मतलब वो है ही नहीं पानी। उसी प्रकार ही आत्मा में ये अवस्थाओं, जो भ्रांतियाँ होती हैं, ये उसी तरह है जैसे मृग तृष्णा का जल है, नहीं हुआ कभी तीनों कालों में, लेकिन उस समय में जरूर भासता है। इसलिए जो हिरण है ना, वो भागता है मरुस्थल में पानी को देख करके, जो व्यक्ति होती है ना बिल्कुल रिस्कती है, तो उसको लगता पानी है, भाग के जाता है तो वहाँ पानी नहीं होता, और आगे भागता है कि वहाँ होगा, इसलिए वो भागता भागता ही मर जाता है, उसके प्राण ही समाप्त हो जाते हैं, लेकिन उसको पानी नहीं मिलता। तो इसी प्रकार हम लोगों का भी यही है कि हम ये संसार को इसके पीछे भागते रहते हैं कि यहाँ से सुख मिलेगा, वहाँ से सुख मिलेगा, वहाँ से सुख मिलेगा, लेकिन सुख है नहीं कहीं, सुख है ही नहीं। जो जो भासता है, जैसे वो पानी का आभास था ना, आभास था, वो पानी की छाया थी, उसी प्रकार जो कुछ हमारे को सुख की प्रतीति लगती है ना थोड़ी देर के लिए, वो सुख का आभास है, सुख नहीं है। क्योंकि ये बात उपनिषदों ने, ग्रंथकारों ने निश्चय की है, यो वही भूमा तत् सुखम नाल्पे सुखमस्ति, जो भूमा है, जो व्यापक है, वही सुख स्वरूप है, रसो वही सह, और रस स्वरूप है, सुख स्वरूप है, नाल्पे सुखमस्ति, अल्प में परिच्छिन्न में सुख नहीं है। जब सुख नहीं है तो हमारे को क्यों लगता है कि उसमें है? इसका मतलब हमारी भ्रांति है, सुख तो उसमें है ही नहीं, सुख तो परमात्मा में है। तो जो सुख का चाहे सदा शरण राम की ले, जिसको सुख चाहिए सदा सुख, सदा सुख, साथ में विशेषण दिया है वहां, जो सुख को चाहे सदा, सदा का मतलब होता है नित्य सुख, जिसको चाहिए क्षण सुख चाहिए तो वो घूमता फिरे, थोड़ी देर के लिए तो मिल जाएगा उसको, लेकिन जो सदीवी सुख चाहिए तो शरण राम की ले। और क्या है सभी पुरुषों की इच्छा का विषय, उसी को पुरुषार्थ बोला ना, सभी लोग क्या चाहते हैं? लोग सुख, हम लोग क्या चाहते हैं? गुरु महाराज जी ने इस बात को कहा है, ये बात नहीं है, गुरु महाराज जी ने कहा कि सब लोगों की इच्छा क्या है, गुरबाणी में कहा है महाराज जी ने यही बात, कहते हैं कि सुख को मांगे सब को, दुख ना मांगे कोई। सारे लोग सुख ही चाहते हैं तो दुख ना मांगे कोई और सुख को मांगे सब को, ये गुरमत की मुक्ति का स्वरूप है। लोग कहते हैं भी गुरमत में मुक्ति किसको मानते हैं आप लोग, जैसे सभी शास्त्रकारों का सिद्धांत होता है ना, तो कहते हैं आपका गुरबाणी का सिद्धांत क्या है, गुरबाणी की मुक्ति क्या है। तो यहाँ दोनों बात निकली कि नहीं, सुख को मांगे सब को का अर्थ क्या हुआ, हमारे को परमानंद की प्राप्ति चाहिए, सुख का अर्थ है परमानंद, तो दुख ना मांगे कोई का अर्थ क्या हुआ, दुख की अत्यंत निवृत्ति। तो हमारी मुक्ति वही है जो शास्त्रकार दूसरे बताते हैं, वही हमारे को गुरबाणी बताती है कि दुख की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति सभी चाहते हैं, पर होता क्या है, सुख को मांगे सब को, दुख ना मांगे कोए, सुखे को दुख अगला, सुखे को दुख अगला, मनमुख बूझ ना होए। कहते हैं सुखे को जो जो जिसको सुख चाह करके पकड़ता है ना, दुख अगला, अगला करते हैं बहुता, जिस चीज को सुख स्वरूप समझ के पकड़ता है उसमें से आगे बहुत ज्यादा दुख मिलता है उसको, लेकिन मानमुख बूझ ना होए, मानमुख को नहीं पता चलता, वो उसको सुख स्वरूप समझ के पकड़ता है, जब उसमें से दुखी होता है तब छोड़ देता है, फिर दूसरे को पकड़ लेता है। तो इसी प्रकार पकड़ता जाता है कि इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, सदीवी सुख उसको वही उसकी हालत होती है, जैसे जो कस्तूरी मृग ना जाने भ्रम दा भ्रम पलाया, कस्तूरी उसके भीतर है, उसकी नाभि में है हिरण के, लेकिन मृग ना जाने, नहीं जानता ना वो, नहीं जानता उसको कि कहाँ है मेरे के, उसको कस्तूरी की सुगंधी आ रही है तो सुगंधी के लिए बहुत तेजी से दौड़ता है, वहां होगी वहां होगी, लेकिन कस्तूरी कहाँ है, उसकी नाभि में है। जो कस्तूरी मृग ना जाने भ्रम दा भ्रम पलाया, नहीं पता चलता। उसी प्रकार कहते हैं कि घर ही में अमृत भरपूर है, मन मुखा साध ना पाया, हृदय रूपी घर के अंदर ही अमृत क्या है, स्वरूप रूपी अमृत है, पर मन मुखा साध ना पाया, मन मुख जो है उसको स्वाद नहीं आता उसका, क्योंकि स्वाद कब आएगा, जब वो स्वाद छोड़ेगा, कोई कोई ना कोई स्वाद तो ले रहा है ना, वो हम ले रहे हैं स्वाद, पहले ले रहे हैं, जैसे कई स्वामी जी ने आपको बताया था वहां प्रवचन में कि जैसे चींटी, तो चींटी है ना, चींटियां इकट्ठी हुई तब किसी मछली को खाने लगी तो एक चींटी के मुंह में गंदगी पड़ी हुई थी, तो कहती मेरे को तो ये अच्छा नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, तो दूसरी ने कहा पहले मुख साफ करके आओ, उसका मुंह धोया, उसका मुख साफ कराया तो तब उसको स्वाद आया। तो हमारे को स्वाद क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हम स्वाद ले रहे हैं ना किसी चीज का, एक समय में एक ही स्वाद आएगा। तो कहते हैं महाराज जी गुरबाणी में भी कहा है कि ये स्वाद पहले छोड़ो, एह रस छाडे ओह रस आवा, ओह रस पिया एह रस नहीं पा, ये जो संसार के रस है जब छोड़ोगे तब वो रस आएगा, तो जब वो रस आ जाएगा तो ये रस होर जाने साध सब मीठे। जहां कहते हैं कि एक बहुत छोटा सा दृष्टांत महाराज ने दिया गुरु अमरदास जी ने, ए रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास ना जाए, तू कहेगी कि तेरी तृप्ति हो जाए, तेरी प्यास बुझ जाए, लेकिन बुझेगी नहीं, क्योंकि तू अनरस राच रही, तू दूसरे रसों में लपटी हुई है, इसलिए वहां तेरी प्यास बुझने वाली नहीं है, तू अनरस राच रही तेरी प्यास ना जाए। कहते प्यास ना जाए हो और कित, जिथे मर्जी कहते हैं पंजाबी च, और कहते जहां भी दौड़ ले तू कि मेरी प्यास बुझ जाए, प्यास नहीं, प्यास ना जाए हो और कित, जहां भी तू दौड़ ले तेरी प्यास नहीं जाएगी, जिचर हर रस पल्ले ना पाए, जब तक हरि नाम का भक्ति का स्वरूप का रस तेरे को नहीं आता तब तक तेरी प्यास नहीं बुझ सकती। तो इसलिए जब हम महात्माओं की शरण में आ करके, ऐसे जो श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा हैं इनकी शरण में बैठ करके जब तक चिंतन नहीं करते तब तक हम अपने सजीवी सुख को प्राप्त नहीं हो सकते। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः।